जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम नमो वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन कृष्ण मेधा प्रभु के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उनके दादाजी उजा भाई की श्राद्ध तिथि पर हम लोग ने पिछले 7 दिनों में अजामिल प्रसंग की कथा सुनी और इस कथा के दौरान आप सब लोगों ने जीव की कर्म की गति का वर्णन सुना। जीव जब इस संसार में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसे कर्म करना पड़ता है, फिर चाहे अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, कर्म ही तो करना ही पड़ता है। नहीं कस्य क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। कर्म के बिना इस संसार में कोई रह नहीं सकता है। कार्यते ही वशह कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, क्योंकि इस भौतिक जगत में सत्व रज और तमो गुण ये 3 प्रकार के गुण है और ये 3 प्रकार के गुण जबरदस्ती संसार के जीवों को कर्म में लगाते हैं। यदि कोई व्यक्ति माने कि मैं मेरी शक्ति से कर्म कर रहा हूं तो यह गलत है। गीता में तो भगवान उसे मूर्ख कहते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं 3 गुणों के कारण कर्म होते हैं। अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी है, जो मूढ़ है, वो मानता है कि मैं कर्म करता हूं, ये सत्व रजस तमस गुण है ही नहीं। तो माया के इस 3 गुण सत्व रजस तम गुणों में बंधकर व्यक्ति 3 प्रकार के कर्म करते हैं। जो सत्व गुण में स्थित हैं वे अच्छे कर्म करते हैं, जो रजोगुण में है वो अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, बीच के कर्म करते हैं। और जो तमोगुण में है, तमोगुण में रहने वाले पाप कर्म करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हैं, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है। कुछ लोग कहें तो मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा, कर्म करूंगा ही नहीं। परंतु भले आप कुछ काम न करो परंतु सांस तो लेते हो, सांस लेना भी एक कर्म है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो इस सांसों में कई सारे जीव इत्यादि अंदर जाते हैं। सांस लेना भी एक कार्य है, तो इसका अर्थ है कि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। और शास्त्र का सिद्धांत है कि जैसा कर्म हम करते हैं उस कर्म का वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे तुरंत हो, चाहे एक घंटे के बाद हो, चाहे एक दो दस जन्म के बाद हो, कर्म का फल निश्चित भुगतना पड़ता है। तो किस कर्म का कैसा फल है ये केवल भगवान जानते हैं। कभी कभार हम ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल तुरंत मिल जाता है, कभी कभी हम ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल एक दो साल के बाद मिलता है, कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल दस जन्म के बाद मिलता है। कौन से कर्म का फल कैसा और कब प्राप्त होता है ये गहना कर्मणोगति ये कोई जान नहीं सकता है, परंतु कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप देखो कि यदि कोई अच्छा भोजन नहीं करता है, बाहर का रास्ते का कोई भोजन करता है, तो वो तुरंत बीमार नहीं होता है, तुरंत उसे बहुत आनंद आता है भेलपूरी पानीपूरी खाने में। भोजन अच्छा नहीं है, वह कर्म कर रहा है, परंतु जब वे कर्म कर रहा है तब उसे आनंद आ रहा है, परंतु एक दो तीन पांच दिन के बाद उसका फल मिलता है कि उसे लूज मोशन हो जाता है या गड़बड़ी हो जाती। यदि आप बाहर का गंदा पानी पियो तो पानी पीते वक्त आनंद आता है, परंतु 15-20 दिन के बाद आपको पीलिया हो जाता है। तो कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, परंतु कुछ कर्म जैसे डायमंड मार्केट में कुछ लोग काम करते होंगे तो उसमें जो छूटक में जाते हैं उसे एक दिन में शाम को ही मिल जाता है पैसा, अपने कर्म का फल शाम को ही मिल जाता है, परंतु जो नौकरी करते हैं उसे एक महीने के बाद मिलता है। तो फल मिलता है, परंतु कब और कैसा फल मिलता है ये केवल भगवान जानते हैं। तो यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म किसे कहते हैं? अच्छे कर्म उसे कहा जाता है, भगवान ने जब यह संसार बनाया तो इसी के साथ वेद और शास्त्र का निर्माण किया। तो शास्त्र में जीव के लिए जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य करने के लिए कहे गए हैं, शास्त्र के अनुसार जो अपना जीवन बिताता है उसे अच्छा कर्म कहते हैं, और शास्त्र के विरुद्ध अपना जीवन बिताता है उसे बुरा कर्म कहते हैं। तो जो लोग अच्छा कर्म करते हैं वह ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वे ऊपर के लोकों में जाते हैं, परंतु जो बुरा कर्म करते हैं वह अधो गच्छन्ति तामसा, वह अधोगति की ओर, नरक की ओर जाते हैं। जीवन भर यदि शास्त्र का पालन करते हुए, शास्त्र को समझते हुए, गीता और भागवत के प्रवचन में बैठकर गीता और भागवत के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो मृत्यु के बाद निश्चित वे भगवान के धाम में जाते हैं। परंतु जो पाप करते हैं, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं, ऐसे लोगों को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। हम लोगों ने सुना अजामिल को लेने के लिए सपास हस्तान तीन दृष्टवा वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमणम आत्मानम नैतुमागतान। यमराज के तीन तीन दूत लेने के लिए आते हैं और एक जीव को जबरदस्ती जिसने पाप किया है उसे यहां से लेकर जाते हैं। 99 योजन का रास्ता तय करना होता है, फिर वहां से पितृलोक में लेकर जाते हैं, पितृलोक में उनकी सजा सुनवाई होती है और फिर नरक लोक में लेकर जाते हैं। उस व्यक्ति को बहुत दंडित किया जाता है, उस जीव को बहुत दुखी किया जाता है, परंतु गरुड़ पुराण में वर्णन है जो व्यक्ति नरक में है, पितृलोक में है, जिस व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हैं और यमराज के अंडर में चला गया है, परंतु उस व्यक्ति के कोई संबंधी उनका पुत्र या उनका पौत्र यदि उसके मर जाने के बाद मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना नरक लोक में जीव को बहुत भूख लगती है परंतु वहां पर भोजन नहीं दिया जाता है, वहां पर बहुत तड़पाया जाता है। तो नरक में बहुत दंडित किया जाता है, दुख दिया जाता है, व्यक्ति बहुत दुखी होता है। परंतु उस व्यक्ति का पुत्र या पौत्र, उनका उनके स्नेही जन यदि यहां पर रहते हुए श्राद्ध कर्म करते हैं तो वह श्राद्ध के द्वारा वह भोजन उसे वहां पर प्राप्त होता है। पितृलोक के जो देवता है उनका वाहन है कौवा। यदि श्राद्ध कौवे को खिलाया जाए या गाय को खिलाया जाए तो यह भोजन पितृलोक में उसके पितरों को प्राप्त होता है। और यह भोजन सबसे पहले देवता लोग ग्रहण करते हैं, और शास्त्र की यह मान्यता है कि देवता जब यह भोजन ग्रहण करते हैं तब सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो आया है, इसलिए उसकी सजा थोड़ी कम करो। थोड़ी सजा कम होती है, पूरी कम नहीं, बंद नहीं कर देते हैं, परंतु थोड़ी अच्छी दृष्टि हो जाती है बेचारे को, क्योंकि उनके पुत्र बहुत मेहनत कर रहे हैं नीचे से। देवता लोग यह श्राद्ध का भोजन कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद उनके पितृ वहां पे नरक में जो बहुत दुखी हो रहे हैं, भूखे हैं, फिर उसको भोजन दे देते हैं, आप भी खाओ। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णन है कि नरक में गए हुए, पितृलोक में गए हुए माता पिता वह राह देखते रहते हैं कब मेरा पुत्र मुझे भोजन भेजे। साल में एक बार यह अवसर आता है और वे राह देखते हैं कब श्राद्ध होगा और कब हमें भोजन मिलेगा। तो सभी पुत्रों का कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के पीछे श्राद्ध कर्म करें। षोड़श संस्कार है, व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो कई प्रकार के संस्कार होते हैं, तो उसमें श्राद्ध करना भी एक संस्कार है। तो एक अच्छे पुत्र को चाहिए कि अपने पितरों के पीछे श्राद्ध करे। श्राद्ध के द्वारा वे अपने पितरों को यह भोजन प्राप्त करा सकता है और उनकी सजा कम करा सकता है। श्राद्ध करने से सजा कम होती है, श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। और श्राद्ध के साथ साथ यदि कोई भक्ति करने लगे, यदि व्यक्ति यहां पर रहने वाला व्यक्ति भजन करने लगे, तब तो उनके पितरों को बिल्कुल मुक्त कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए, प्रहलाद महाराज ने भगवान को स्तुति की और स्तुति करने के बाद अंत में एक ही चीज मांगी, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। शुद्ध भक्तों का यह भाव होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो ये मेरे पिता, मैं मानता हूं कि बहुत दुष्ट थे, असुर थे, आपसे शत्रुता रखते थे, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता को अच्छी गति प्रदान कीजिए। तब नरसिंह देव भगवान ने इतना ही कहा कि प्रहलाद तुमने भक्ति की है, और भक्ति करने वाले पिता नहीं, भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ी भगवान के धाम में चली जाती है, आप टेंशन मत लो, आपके पिता को कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से भजन भक्ति करने वाले के पितृ निश्चित सुखी रहते हैं। इसलिए ऐने केने प्रकार यदि हमें सुखी होना है और पितरों को सुखी करना है तो हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से सब लोग प्रसन्न रहते हैं, यमराज जी, यमदूत, ये सब लोग भक्ति करने से प्रसन्न होंगे, अन्यथा प्रसन्न नहीं हो सकते। कुछ लोग अन्य अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, अन्य पितरों के शरण में जाते हैं, बहुत लोगों के शरण में जाते हैं, परंतु यदि कोई केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाए, भगवान गोविंद की शरण में चला जाए, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतः मुकुंद परिहर्त्य कर्तम, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में सभी लोगों के जड़ है, मूल है, यदि मूल में पानी डाला जाए तो फिर पत्ते में और फूल में पानी डालने की जरूरत नहीं है, और यदि मूल को छोड़कर यदि आप पत्ते में, डाली में और फल फूल में पानी डालते हो तो वहां पर पानी पहुंचता भी नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति मूल जड़ में पानी डालता है, और जड़ है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं से ही देवता प्रकट होते हैं, पितृ और पितृ के देवता सब लोग उन्हीं से ही प्रकट होते हैं। यथा तरो मूल निशेच नैन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने पर सभी डाली और पत्ते स्पृष्ट हो जाते हैं, वैसे भगवान से कृष्ण को प्रसन्न करने पर समस्त देवी देवता और पितृलोक में रहने वाले यमदूत और यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या, ठीक उसी प्रकार भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। इसलिए यदि आप अपने पितरों का उद्धार चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, अपने सभी स्नेहियों के जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो निश्चित रूप से सब लोग सुखी रहते हैं। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति का अर्थ है भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना। तुम सबको, सभी पुत्र को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाए। कभी कभार देखा जाता है कि बेचारे पुत्र भक्ति में लगे हैं परंतु माता पिता उसे भक्ति करने नहीं देते हैं। माता पिता नहीं जानते हैं कि पुत्र जो कार्य कर रहा है सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और उस पुत्र के कार्य से वे तो प्रसन्न रहेगा ही परंतु माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। लोग नहीं जानते हैं और अपने पुत्र को भक्ति करने के लिए रोकते हैं, परंतु इस प्रकार से शास्त्र को जानकर सभी माता पिताओं को चाहिए कि अपने पुत्र को भक्ति करने दे, और यदि पुत्र भक्ति नहीं करते हैं तो उसे भक्ति में लगाए। यदि माता पिता का पुत्र भक्त नहीं है तो उस पुत्र के लिए और माता पिता के लिए यह जीवन बहुत भयावह हो जाएगा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन ने कृष्ण को कहा है कि कृष्ण, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्यत अधर्मो अभिभवत्युत। कृष्ण, कुल का नाश होने से इस संसार में संस्कार न मिलने के कारण इस संसार की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। अधर्मो अभिभवात कृष्ण, अधर्म प्रवेश करने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और स्त्रीषु दुष्टेषु वार्षेण जायते वर्ण संकर। और इस संसार की स्त्री यदि अपने पुत्र को संस्कार नहीं देगी तो उनके पुत्र वर्ण संकर हो जाएंगे। और संकरो नरका येव कुल ज्ञाना कुलस्य च, और ये वर्ण संकर प्रजा जो भगवान की भक्ति नहीं करती है वे क्या करेंगे? पतंती पितरो हेशा लुप्त पिंडो दक क्रिया, पतंती उनके पितरों का पतन करेंगे। मान लीजिए किसी के माता पिता कुछ दान पुण्य करते हैं और पुण्य करके स्वर्ग में पहुंच गए, परंतु पुत्र यदि ठीक नहीं है, पुत्र यदि भगवान का भजन नहीं करता है तो स्वर्ग में गए माता पिता को वहां से नरक में भेजेगा। इसलिए चाहिए कि अपने पुत्र को भक्ति में लगाए और स्वयं भक्ति करें। भक्ति ही इस संसार में सभी दुखों का, भक्ति ही संसार में सभी समस्याओं का हल है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, और भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है, भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। तो इस प्रकार से सबको महामंत्र का जप करना चाहिए और प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है जैसे आपको इस देश का अच्छा नागरिक बनना है तो इस देश के जो नियम है उसका पालन करना होगा, और जो यम है वे चीज नहीं करनी होगी। अच्छा नागरिक बनना है तो गवर्नमेंट ने जो कुछ करने के लिए कहा है, टैक्स भरना होगा, तो जो करने के लिए कहा है वो करना है, और जो नहीं करने के लिए कहा है अर्थात सिग्नल नहीं तोड़ना है, रास्ते पर कचरा नहीं फेंकना है, जो नहीं करने का है वो नहीं करना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट के नियम का पालन करते हो तो आप भक्त हो, और पालन नहीं तो आप नागरिक हो, और गवर्नमेंट के नियम का पालन नहीं करते हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान के भी कुछ यम है, कुछ नियम है। यदि भगवान के नियमों का जो पालन करते हैं तो भक्त है, और यम का पालन नहीं करते हैं वो भक्त है। तो भगवान के यम और नियम क्या है? ज्यादा नहीं, चार चीज नहीं करनी है और पांच चीज करनी है। तो सबसे पहले जो नहीं करना है, जो हम माइनस में है, उसमें पहले जीरो लेवल पर लाना होगा। चार चीज नहीं करनी चाहिए, और वो चार चीज क्या है? मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और तीसरा है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए सनत प्रभु, और चौथा है कि पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कहोगे इससे क्या होता है? भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, यह धर्म चार स्तंभ के ऊपर खड़ा है। धर्म के चार पांव हैं, और वह चार पांव हैं दान, तपस्या, पवित्रता और सत्यता। धर्म के चार चरण हैं, और यदि हम यह चार प्रकार के पाप करते हैं तो यह चारों चरण टूट जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति उसे कहा जाता है जो इस चार नियम का पालन करता है, और चार नियम का पालन नहीं करता है और अपने आप को यदि भक्त मानता है तो उसका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि धर्म के चार चरण हैं, जिस चार चरण के ऊपर धर्म खड़ा है वह चरण को ही आपने काट दिया तो फिर कहां से आप धर्म में खड़े रह पाओगे? तो मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध स्त्री संग, ये चार चीज सबसे मुख्य चार चरण है। ये चीज जीवन में कभी आनी नहीं चाहिए, और पांच चीज करनी चाहिए, और उनमें से सर्वप्रथम भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग बहुत ही मुख्य है, उत्तम है, और जीवन में प्रगति होगी केवल भगवान के भक्तों का संग करके। आज हमारे गले में कंठी है, तिलक है, हम कुछ भगवान का नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, क्यों? यदि बहुत बहुत विचार करो तो आपको पता चलेगा कि किसी भगवान के भक्तों का संग हुआ उसके कारण यह सब हो गया। सभी लोगों के जीवन में भक्तों के संग के अलावा कुछ नहीं होता है। तो भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो अभक्तों का संग है वो छोड़ना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति भक्ति में आकर भी, भक्तों के बीच में रहकर भी भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसका कारण यही है कि वे अभी भी अभक्तों का संग कर रहे हैं। इसलिए अभक्तों का संग छोड़कर केवल भगवान के भक्तों के साथ उठना, बैठना, बात करना, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान के नाम का जप करना चाहिए प्रतिदिन नियम के साथ। ये भगवान के महामंत्र का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तीसरा नियम है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम एक अद्भुत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है, और सब जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब ग्रंथ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भक्ति शुरू होती है। भगवत गीता सुन लेने के बाद भक्ति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवत गीता का अंत कहां पर होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब कुछ छोड़कर भक्ति करो। परंतु भागवत सुनना ही एक भक्ति है। भागवत भक्ति से लबालब भरा हुआ ग्रंथ है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में भक्ति और भगवान को भरा गया है। भागवत के श्लोक भगवान से भी दिव्य है। महामंत्र जितने दिव्य भागवत के श्लोक है। महामंत्र में और भागवतम के श्लोकों में कोई अंतर नहीं है। यदि आप महामंत्र जपते हो और उसी के साथ साथ भागवत के श्लोक का पाठ करते हो, दोनों का फल बराबर होगा। और हमारा अनुभव है कि महामंत्र जपते वक्त शायद भगवान में मन लगे या न लगे, परंतु भागवत सुनने और पढ़ने में निश्चित मन लगता है। अब सुनिए, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप जप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो आपका मन कहीं भी भटकेगा, परंतु आधे घंटे से मैं यहां पर बोल रहा हूं, आपका मन कहीं पर जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि भागवत में बहुत शक्ति है। तो भागवत ग्रंथ का श्रवण और पठन करना चाहिए, यह तीसरी बात है। भक्त बनने के लिए चौथा नियम यह है कि सभी व्यक्ति को भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। सभी लोगों का यह लक्ष्य होना चाहिए। भले आज हम बिजनेस में सब कार्य में लगे हैं, परंतु हमारा अंतिम लक्ष्य यह है, जब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेंगे, 50-60 साल हो जाएगा, तो अभी से करना ही चाहिए। परंतु वानप्रस्थ अवस्था में हमें भगवान के अर्च विग्रह के प्रति सेवा पूजा करते हुए उसके प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, भगवान के अर्च विग्रह कई प्रकार के होते हैं। भागवत में कहा गया है 8 प्रकार के भगवान के अर्च विग्रह होते हैं। शैली दारू मही लोही लेप्या लिखिया चैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकार के भगवान के अर्च विग्रह होते हैं, तो उनमें से किसी भी एक अर्च विग्रह की सेवा पूजा करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में ही पूजित होते हैं। कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते हैं, अर्च विग्रह के रूप में भगवान सबको दर्शन देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए चौथा नियम यह है कि सबको भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और अंत में पांचवा नियम बताते हैं कि भगवान के धाम में वास करना चाहिए। धाम का अर्थ होता है भगवान का अपना घर। भगवान जहां पर घूमे हैं, जहां जहां पर भगवान का चरण पड़ा है, वे भगवान का धाम है। वैसे तो ये समग्र पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड भगवान का ही धाम है, परंतु फिर भी भगवान ने भक्तों के साथ जहां पर लीला की है, वे भगवान के उत्कृष्ट धाम है। तो भगवान के धाम में सबको वास करना चाहिए। भगवान के धाम में जाने से, तीर्थाटन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है और स्वाभाविक हमारा मन भगवान की ओर बढ़ता है। यहाँ पर जितना मन भगवान में लगता है, यदि धाम में बैठकर वही आप नाम लो या कथा सुनो, तो उसे हजारों गुना ज्यादा मन भगवान में लगता है। तो सभी भक्तों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के धाम में वास करना चाहिए। सभी भक्तों का यही लक्ष्य होना चाहिए, जैसे ही यहां से समय मिला तो धाम में चले जाए। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है, जीव का अंतिम रहने की जगह कहां पर है, तो राय रामानंद कहते हैं कि वृंदावन वास। वृंदावन भगवान का धाम ही किसी व्यक्ति का, भक्त का अंतिम रहने की जगह है। तो सबके मन में यह उत्कंठा होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के धाम में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान के धाम में तीर्थाटन करेंगे। तो इस प्रकार से यह 5 चीज करनी है। कौन सी 5 चीज? सबसे पहले भक्तों के साथ संग करना, भक्तों के साथ रहना। दूसरा, भगवान के नाम का महामंत्र का जप करना। तीसरा, क्या बताया था, श्रीमद् भागवत को सुनना और पढ़ना। चौथा, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा सेवा इत्यादि करना। और पांचवा, तीर्थ यात्रा में तीर्थाटन करना, धामवास करना। और 4 चीज नहीं करनी चाहिए, वह क्या है? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और पर स्त्री संग नहीं करना। ये 4 चीज नहीं करते हो और ये 5 चीज करते हो तो आप भगवान के परफेक्ट भक्त हो। और इस 9 चीज में से एक चीज भी छूट जाती है तो कल से अपने आप को भक्त मत कहना, क्योंकि अपने आप को भक्त यदि हम कहेंगे तो ये बहुत बड़ा धोखा करेंगे संसार में। ये 9 क्वालिफिकेशन है किसी को भक्त बनने की, और यदि ये क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं है और अपने आप को भक्त कहता है तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। जैसे कोई 10वीं में फेल हुआ है और संसार में कहता है नहीं मैं 10वीं में पास हो गया हूं, वह हुआ है फेल और नकली सर्टिफिकेट बनाकर बताता है कि मैं पास हुआ हूं, तो गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा है उसका। भले ही संसार के लोग उसकी बात को मान लेंगे, 4-5-10-15 लोग मान लेंगे, तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, मान लेते हैं कि ये भक्त हैं, परंतु भगवान की निगाह में वो बहुत बड़ा गुनहगार माना जाएगा। भक्त के रूप में कंठी और तिलक और हाथ में माला रखते हुए भी ये 9 चीज का पालन नहीं करते हैं, किसी नशा में फंसे हुए हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो वो भक्त की निगाह में, भक्त के रूप में वो बहुत बड़ा पाखंड कर रहा है। उसे चाहिए कि कल से अपने आप को भक्त कहना छोड़ दे, नहीं तो उसको चाहिए कि ये 9 चीज का पालन कल से करने लगे। तो ठीक से इस चीज का पालन करना और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये 5 चीज कोई अपने जीवन में स्वल्प थोड़ी भी करने लगता है तो निश्चित भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करने लगता है। भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कराने में ये 5 चीज महासाधन है। वैसे तो 64 अंग है भक्ति के और 9 भक्ति है, परंतु 9 भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति ये 5 भक्ति। तो सभी भक्तों को इस बात का ध्यान रहे और सब लोग इस बात को अपने जीवन में उतारे और जीवन में उतार कर स्वयं प्रसन्न और खुश रहे और अपने माता पिताओं को, पितरों को प्रसन्न करे। भक्ति करने वाले से सब लोग प्रसन्न रहते हैं। संसार के 4-5 लोग गाली देते हैं, उसके सामने नहीं देखते हैं, ये कोई वो नहीं है। हमें यह देखना है कि भगवान की निगाह में हम कैसे हैं। कुछ लोग डरते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, परंतु समाज वाले क्या है आज, समाज वाले की कोई वैल्यू नहीं है। हमें समाज वालों की नजर में अच्छा नहीं बनना है, भगवान की नजर में और गुरु की नजर में अच्छा बनकर दिखाना। यदि आप समाज को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन बिता दो तो समाज आपको क्या दे पाएगा बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि यदि मैं प्रवचन में आऊंगा तो मेरा बॉस, मेरा सेठ मुझे डांटेगा, मेरे माता पिता डांटेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। ठीक है, यदि समाज की भक्ति करनी है, समाज की सेवा करनी है, पूरा जीवन समाज की सेवा में निकाल दो, पूरा जीवन अपने बॉस की सेवा में निकाल दो, पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में निकाल दो, वे आपको क्या दे पाएंगे बताइए। कोई आपको मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, कोई आपको सुख नहीं दे पाएगा पूरा जीवन सेवा करने के बाद भी। परंतु गुरु और कृष्ण की एक सेवा कर दो, थोड़ा सा प्रसन्न कर दो, वे आपको सब कुछ दे देंगे, यहां तक मृत्यु से बचा देंगे। तो जीवन का यह सर्वोच्च कार्य है, सबको इसमें आदर बुद्धि रखनी चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि हम सब भक्ति करते हैं और कई सालों से भक्ति में लगे हैं, लेकिन फिर भी संसार में जब जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, माला जपते हैं, परंतु लोगों की नजर में हमें नीचा नहीं बनना है, हमें अपने आप को बहुत ऊंचा समझना है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें विवेक बुद्धि रखिए, आदर बुद्धि रखिए, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। संसार के जितने भी लोग हैं सब चमार है, मोची है, सब चमड़े के बंधन में बंधे हुए हैं, केवल चमड़ा को देख रहे हैं और चमड़े को चूस रहे हैं, परंतु हम कृष्ण की भक्ति एक विशेष महान कार्य कर रहे हैं। अपने आप को कम मत समझिए, भजन करने वाले को जमीन से 3 फुट ऊपर चलना चाहिए, नहीं, हम कृष्ण की भक्ति में लगे। भगवान का भक्त कहीं झुकता नहीं है, वैसे तो त्रिनादपि सुनिचे ने हृदय से झुका ही रहता है, परंतु आदर बुद्धि होनी चाहिए हम जो कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं तो हरे कृष्ण बोलने के लिए भी शर्माते हैं, तिलक करने में हम शर्म करते हैं, किसकी शर्म है। लोग सिगरेट पीने में शर्म नहीं करते हैं, नशा करने में शर्म नहीं करते हैं, शराब पीने में शर्म नहीं करते हैं, रास्ते में, ट्रेन में या गार्डन में खड़े खड़े लड़की और लड़के चुंबन करने में शर्म नहीं करते हैं, हम भगवान का नाम लेने में शर्म आते हैं। इतना शुद्ध, इतना पवित्र कार्य करने में किसकी शर्म है। अरे हमें तो बार बार नारा लगाना चाहिए प्रेम से और आदर के साथ और विश्वास के साथ, हम जो कार्य कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है। और ये सब आजकल के क्या कर रहे हैं, कोई करोड़पति अरबपति तो अपने घर का है, हम कृष्ण के पति, कृष्ण हमारे स्वामी है। करोड़पति का लड़का करोड़पति होता है निश्चित रूप से। धीरूभाई अंबानी के घर पर कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही वह करोड़पति है। क्योंकि उनके पिता इतने धनी हैं। तो हम सब कृष्ण के पुत्र हैं और कृष्ण के पास धन की कोई कमी नहीं है। वो तो हजारों करोड़ों लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी की जो स्वामी है उनके हम पुत्र हैं। सबसे धनी तो हम है, किससे डरना है। इस संसार में सबसे बलवान है। इस संसार के लोग की पहुंच कहां तक होती है? किसी नेता तक होती है, किसी बॉडी बिल्डर तक होती है। हमारी पहुंच कृष्ण तक है, जो सभी शक्तियों के स्त्रोत्र है। किससे डरना है? कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। निर्भय होकर, अभय होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए अभय चरण की संस्था में रहकर, हम जिस संस्था में है उनके आचार्य है अभय चरणारविंद, ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद। तो ये अभय की संस्था में रहकर निर्भय होकर प्रचार कीजिए, भक्ति कीजिए। किसी से डरिए मत। भजन करने वाले को डरने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित भगवान उसकी रक्षा करेंगे। 5 साल का बालक भजन कर रहा था प्रहलाद, और उसको मारने के लिए पूरा समाज पीछे लग गया, और इस तीनों लोगों का स्वामी हिरण्यकश्यपु स्वयं उसका शत्रु बन गया, उसको मारने के पीछे पड़ गया। लेकिन निर्भय होकर कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सका, क्योंकि भजन कर रहा था। भजन करने वाले को निर्भय होकर संसार में विचरण करना चाहिए, स्वच्छंद अपने कृष्ण में, नाम में और भगवान की कथा में सराबोर रहते हुए इस संसार में सभी कार्य करना चाहिए। भगवान हमारी ओर देखेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे। जीवन में कभी भी भगवान हमें दुख नहीं प्रदान करेंगे, इसी विश्वास के साथ। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण निश्चित हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति का एक लक्षण है। हम लोग की स्थिति क्या है? भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, परंतु कृष्ण पर विश्वास नहीं है। परंतु अवश्य कृष्ण ही हमारे स्वामी और वही हमारी रक्षा करेंगे, इस विश्वास के साथ यदि भजन करेंगे तो भक्ति करने में बहुत आनंद आएगा। भक्ति तो करते हैं परंतु आनंद नहीं आ रहा है। आनंद इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण पर भरोसा नहीं है। अरे कुछ भरोसा छोड़कर तो देखिए, भगवान गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं, कृष्ण का भजन आज से करने लगिए आप भूखे नहीं मरोगे, आप कपड़े से नहीं रह जाओगे, आप कहीं रहने से बाहर नहीं निकाल दिए जाओगे। परंतु विश्वास नहीं। लोग सोचते हैं हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, मर जाएंगे। विश्वास नहीं है इसलिए यह हो रहा है। भगवान का एक नाम विश्वंभर है, पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं। चोर लुटेरे और डाकू को भी भोजन देते हैं तो उनके भक्तों को भोजन नहीं देंगे? बड़े बड़े पापियों को भी भगवान सुखी रखते हैं तो क्या भक्तों को सुखी नहीं रखेंगे? निश्चित भगवान के भक्त सुखी रहते हैं। कभी कभार देखा गया है कि भक्तों के जीवन में दुख आता है, परंतु भगवान ही दुख देते हैं, और दुख इसलिए देते हैं ताकि वह भक्त भक्ति करे और इसी जन्म में भगवान के धाम में चला जाए। तो इस प्रकार से सबको भक्ति करनी चाहिए और निर्भय होकर भक्ति और प्रचार करना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। भजन करने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, साथ साथ अपने माता पिता और स्वर्गवास अपने पितरों का भी उद्धार करता है। तो आज कृष्ण मेधा प्रभु ने अपने पितरों के पीछे श्राद्ध पक्ष निमित्त पर यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण मेधा प्रभु उनके माता पिता उनके परिवार को भक्ति प्रदान करें, भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें, और उनके पितृ जहाँ भी हैं उसे खुश रखे, सुखी रखे और उसकी गति को आगे प्रदान करें, और वे भी भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हो। तो महामंत्र के साथ भगवान से यह प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कोई प्रश्न है किसी का? जो भक्ति करते हैं वे डायरेक्ट भगवान के धाम में जाते हैं। जिसकी भक्ति, अब दो चीज है, अब दो भक्त की दो प्रकार की मृत्यु होती है। एक, किसी भक्त ने भक्ति पूर्ण कर ली, 100% पूर्ण भक्ति हो गई, तो उस भक्त को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, जैसे अजामिल को आए और सोने के विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर जाते हैं। परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जिसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है, आधी भक्ति छूट गई। तो आधी भक्ति छोड़कर जिस भक्त की मृत्यु होती है तो मरने के बाद तुरंत वह किसी मनुष्य की योनि में चला जाता है। भक्त जब मरता है, उसकी भक्ति अपूर्ण है, तो तुरंत वह किसी माँ के गर्भ में चला जाता है। परंतु कौन सी माँ के गर्भ में जाता है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेह। भक्त की जब मृत्यु होती है तो किसी भक्त परिवार में, और कैसे भक्त परिवार में? करोड़पति भक्त तो है, परंतु वह करोड़पति धनी भक्त के परिवार में वह जन्म लेता है, ताकि ऐसे परिवार में जन्म लेकर वह केवल भजन भक्ति करके उस जन्म में भगवान के पास चला जाए। तो ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है जिस परिवार में धन भी है और भक्ति भी है, उसे कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति करके भगवान के धाम में चला जाए। और उसका प्रमाण आपके सामने बैठा है, जन्म से कोई काम करने की जरूरत नहीं, और जन्म से ही भक्त परिवार में जन्म। तो यदि हमारे ऊपर है, हमें ऐसा जन्म मिला है, अब हम चाहे तो इसी जन्म में भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इसी प्रकार इसे देना नहीं चाहिए मेरा प्रमाण, लेकिन कोई दिखा नहीं इसलिए मैंने कह दिया। तो ऐसा जन्म मिलता है, ठीक है? पूछे, संसार में कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, और पितरों की पूजा करने वाले तो बेचारे डर के मारे पूजा करते हैं कि नड़े नहीं, शांत रहे। तो प्रायः समाज डर के मारे पूजा करते हैं। और पितृ क्यों नड़ते हैं? क्योंकि उसकी आसक्ति कहीं ना कहीं जगह पर रह जाती है, या पुत्र कुछ गलत काम करता है वहां पर बहुत दंडित होते हैं, इसलिए पितृ दुखी रहते हैं और उसको परेशान करते हैं। परंतु पुत्र यदि भजन करता है तो ये करने की आवश्यकता नहीं। तो यदि पितृ को प्रसन्न करना है तो भक्ति कीजिए। आप देखिए, मेरा इतने साल का अनुभव है, जो लोग भक्ति करते हैं उसे न तो कोई पितृ नड़ते हैं, न तो कोई देवता नड़ते हैं। भजन करने वाले को कोई नहीं नड़ता, और जो भजन नहीं करते उसको सब लोग नड़ते हैं, पितृ नड़ते हैं, देवता नड़ते हैं, घर वाले भी नड़ते हैं उसे। भजन नहीं करने वाले को सब लोग परेशान करते हैं। लेकिन आप एक, मुझे एक प्रमाण दिखा दीजिए, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए जो भक्ति करता है और उसे पितृ नड़ रहा हो। कोई नहीं, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, पितृ को तुरंत पता चल जाता है भजन कर रहा है। हाँ, अवधि तो वही रहती है, जैसे यहां पर कोई पाप कर्म करता है तो पाप कर्म करने से उसे नरक में मान लीजिए 1000 वर्ष तक सजा दी गई, परंतु यहां से कोई श्राद्ध करता है, इत्यादि करता है, तो वह नरक में 1000 साल रहना है तो 1000 ही साल रहेगा, परंतु वहां पर जो दुख दिया जाता है, दंड दिया जाता है, उसका कष्ट उसे कम होगा। समझे? गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अवधि वही रहती है, परंतु कष्ट, जो कष्ट होता है, जैसे एक चाबुक मारी और जितना कष्ट होता है, यहां पर उसका पुत्र कुछ कार्य विधि करता है तो वो कष्ट कम होता है, बस इतना फर्क पड़ता है। और पूछिए। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत छोटा सा दूं, यहां पर कृष्ण मेधा प्रभु ने प्रोग्राम रखा है, ठीक है? तो कमलेश प्रभु को बुलाया, तुरंत आ गए, दर्शन दे दिया। अमित प्रभु ने दर्शन दे दिया। वड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है तो आएंगे तुरंत? हाँ, टाइम नहीं है, और वो बड़े व्यक्ति हैं, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। तो इस संसार के कुछ ऐसे सिद्ध व्यक्ति है या देवी देवता है, वे आ जाते हैं तुरंत, परंतु बड़े लोगों को बुलाने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए प्रभु जी। और इस संसार में जैसे आप कहते हो मुझे चमत्कार देखना है, बिना चमत्कार के मैं कैसे मानूं? चमत्कारिक भक्ति आपको करना है। तो आपने गणेश जी को देखा होगा और भी माताओं को देखा होगा, और आप उसे यदि चमत्कार मानते हैं तो ऐसे चमत्कार दिखाने के लिए भगवान को यहां पर आने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त ही इतना चमत्कार दिखा देते हैं तो लोग समझ जाते हैं नहीं ठीक है, कृष्ण को क्या आने की जरूरत है? कृष्ण के भक्त का ही चमत्कार देखिए। एक 27 साल का बालक, 27 साल के व्यक्ति ने 7 दिन कथा किया, वहां पर 1600 लोग आ गए। कौन सी संस्था में, कौन सी जगह पर, और आए और लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। ये छोड़िए, प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए, और अमेरिका जाकर जो बड़े बड़े नशे में डूबे हुए लोग थे, नशे में पड़े रहने वाले लोगों को प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त बना दिया। और इतना शुद्ध भारत में आज ऐसे शुद्ध भक्त नहीं है। भारत के लोगों को वे अमेरिका वाले दीक्षा देते हैं, इतने शुद्ध बना दिया। क्या ये चमत्कार नहीं है? इसे चमत्कार माना जाता है। और वास्तव में भगवान श्रद्धा से दिखते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हेल्प करते हैं, परंतु उसे हमें देखना और समझना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान जुड़े हुए हैं। जैसे आपने गणेश जी को देखा, वैसे कृष्ण को देख पाएंगे, लेकिन उसको देखने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आपने कृष्ण की भक्ति इतनी पूर्ण नहीं की है। यदि आप करेंगे, पूर्ण विश्वास रखेंगे, कृष्ण आपके सामने आएंगे, आपके साथ बात भी करेंगे और आपके समस्त दुखों को हर भी लेंगे। परंतु उसके लिए कुछ करना होगा ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बुला, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है तो केवल फोन करके आ जाओ तो आ नहीं जाएंगे। हम लोग आ जाएंगे, परंतु बड़े व्यक्ति नहीं आएंगे। उसके लिए तो हरे कृष्णा, आइए बैठिए, बहुत कुछ करना हो। भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ करना होता है, और वो है भक्ति। और हमने कितनी भक्ति की है बताइए। मैंने जो 9 चीज बताई उनमें से हम कितना पालन करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। और हम कहेंगे कि भगवान नहीं दिखे तो नहीं दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? दिखे, मेरा भाई को भगवान रोज दर्शन किया, नरसिंह मेहता ने किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, भक्ति करने वाले सब लोग ने किया। आज भी वर्तमान में भी कई आचार्यों ने भगवान का दर्शन किया, आज भी लोग बात करते हैं। भगवान मंदिर छोड़कर भक्तों के साथ चल दिए हैं, मूर्ति चलकर भक्तों के साथ चली गई है, आज भी प्रमाण है। परंतु हम सोचे कि हमारे साथ भी मूर्ति चलने लगे कुछ नहीं किए बिना, तो थोड़ी ना होगा। करना होगा, कुछ भक्ति करनी होगी। निश्चित आप भक्ति कीजिए, निश्चित भगवान आपको भी दर्शन देंगे, आपके साथ बात भी करेंगे। उसके लिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और कोई प्रश्न है?